ग्लानिर्भवति भारत अद्युतानम् अधर्मशः तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय शम्भभामि युगे युगे शम्भभामि युगे युगे हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्नथा Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, आज का मंगल प्रभात सबके लिए सुबह सुखमय हो. याद रहे आज मंदिर में विशेष पब्लिक प्रोग्राम हर रविवार की तरह आज भी होगी जो 11:30 बजे भगवान की आरती के साथ संपन्न होगा. आरती और याद रहे आज मंदिर में भगवान की यानी जगन्नाथ भगवान की बच्चों के लिए रथ यात्रा होगी यानी बच्चे आज भगवान के रथ यात्रा करेंगे. तो आप सब अपने अपने बच्चों को लेकर के मंदिर में 11:30 बजे से पहले पहुंच जाए ताकि बच्चे भी भगवान की रथ यात्रा में सम्मिलित होकर के पुण्य प्राप्त करें. ये माता पिताओं का कर्तव्य कि अपने बच्चों की उन्नति के लिए कुछ ना कुछ करें. तो आज बहुत ही बड़ा शुभ अवसर है. आइए हम आप सब आकर के भगवान की रथ यात्रा में सम्मिलित हो अपने बच्चों को सम्मिलित करा. और याद रहे 7 दिसंबर को सीबीडी यानी सिटी में क्वीन स्ट्रीट में भगवान की वृद्ध रथ यात्रा होगी. हमारी वार्षिक रथ यात्रा होगी 11 बजे से. तो सभी लोग वहां पर भी उपस्थित है मार्क कर ले अपने अपने डायरी में कि 7 दिसंबर 11 बजे भगवान के रथ यात्रा में सम्मिलित होना है. कहते हैं कि भगवान के रथ में सम्मिलित होने से भगवान के रथ यात्रा के समय रस्सी पकड़ के खींचने से हम भगवान के धाम में जाने की क्वालिफाइड हो जाते हैं. हम भगवान के धाम के जाने के रास्ता में पहुंच जाते हैं. और 8 दिसंबर को गीता जयंती है. मैंने पिछले सप्ताह आप सबको याद दिलाया था कि भगवद गीता का पाठ करना शुरू कर दे. कम से कम एक श्लोक जरूर रोज करते रहे. तो आज मैं भगवद गीता की कुछ विशेष बातें आप लोगों को सुनाऊंगा. सर्वप्रथम प्रथम गीता की महिमा. श्रीमद् भगवद गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है. इसकी महिमा अगाध और असीम है. इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है चाहे वह किसी भी देश का किसी भी वेश का किसी भी समुदाय का किसी भी संप्रदाय का किसी भी वर्ण का किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों ना हो. इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं की परंतु वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य यहाँ है और जैसा है वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। यह भागवत गीता ग्रंथ प्रस्थान तत्र में माना जाता है। पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग घंटा पथ अथवा छोड़ी सड़क को प्रस्थान करते हैं। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए तीन राजमार्ग प्रस्थान त्रय धाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, और एक समार्थ प्रस्थान है जिसको भगवद गीता कहते हैं। प्रस्थान त्रय यानी ये मोटिवे है हमारे उन्नति के, ये बड़े मोटिवे है। गीता बहुत विलक्षण है क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ गया है। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र है और भगवद गीता में श्लोक है। भगवद गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये यंत्र मंत्र हो गया। इस श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है और ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवद गीता सभी के काम की चीज है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की एक उपनिषद गीता की बात उपनिषद से भी विशेष है। कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश में केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में दो गुण शब्द और स्पर्श है। वेद भगवान के निवास है और गीता भगवान की वाणी है। निवास तो वास्तविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत है, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है, परंतु गीता पढ़ाई नहीं करती। प्रत्युत्तर अनुभव कराती है। गीता पर कोई टीकाएं हो गई, कई टीकाएं हो गई और कई टीकाएं होती ही चली जा रही और फिर होती ही रहेगी। फिर भी संत महात्मा विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई है वे सब की सब इकट्ठी कर दे तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहे तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है, ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी ही वैसी है रहती है। उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की सीमा नहीं है। अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोहीन, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना भी विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे 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 ही वैसे इसमें गहरी बातें मिलती चलती जाती है। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि यौवन मात्र अनंत है, ऐसे भगवान द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत हाई कैसे सकता है। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि है। अहम आदि देहि देवानाम ऋषि नाम चास्य सर्वशा। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों ना हो और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर वह भगवान की दिव्य आदि दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपने वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण आश्रम देश संप्रदाय मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही उसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी है। भगवद गीता में साधकों का वर्णन करने में विस्तार पूर्वक समझाने में एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है, फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है। केवल संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण के उत्कट अभिलाषा वाले मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है, युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में दिखाई गई है, अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता है। गीता का तात्पर्य थोड़े शब्दों में कहे तो गीता का तात्पर्य है कि मनुष्य मात्र का कल्याण करना। शास्त्रों में कल्याण के कई मार्ग बताए गए हैं। गीता की टीकाओं को भी देखे तो उनमें अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैत द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, अचिंत वेद वेद आदि अनेक मतों को लेकर टीकाएं की गई है। इस प्रकार अनेक वाद सिद्धांत मत मतांतर होते हुए भी गीता के किसी के साथ विरोध नहीं है। गीता में किसी भी मत का खंडन नहीं किया है, परंतु अपनी एक ऐसी विलक्षण बात कही है जिसके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। कारण कि गीता किसी एक वाद मत आदि को लेकर नहीं कही गई है, प्रत्युक्त जीव मात्र के कल्याण को लेकर कही गई है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, टीकाकारों में है। गीता के अनुसार चलने में सगुण और निर्गुण उपासकों को परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधकों के समग्र की तरफ ले जाते हैं। समग्र निर्गुण साकार निराकार द्विज द्विभुज चतुर्भुज शास्त्रभुज आदि सब रूप में परमात्मा के ही अंतर्गत है। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करे किसी की भी उपासना करे संपूर्ण उपासना समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती है। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। गीता का सर्वोपरि सिद्धांत वासुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। संसार के विषय में दर्शनिकों के अनेक मतभेद है। कोई अजात वाद मानता है तो कोई दृष्टि सृष्टिवाद मानता है, तो कोई विवर्तवाद मानता है, कोई परिणामवाद मानता है, कोई आरंभवाद मानता है, पर गीता कोई वाद ना मानकर वासुदेव सर्वम को ही मुख्य मानती है। वासुदेव सर्वम में सभी वाद मत समाप्त हो जाते हैं। कारण कि जब तक अहम की सूक्ष्म गंध रहती है तभी तक दर्शनिकों में और दर्शनों में मतभेद रहता, जबकि वासुदेव सर्वम में हम के सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती। एक परमात्मा तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से निर्वृत्ति की दृढ़ता होती है। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निर्वृत्ति की दृढ़ता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों में मैं ही मैं हूँ, यह बताने के लिए भगवान गीता में चार जगह 7वें, 9वें, 10वें, 15वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्म, निर्गुण, निराकार, कृत अध्यात्म, अनंत योनियों के अनंत जीव, अकेल कर्म, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि के संपूर्ण क्रियाएं, आदिभूत, अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, आदि देव, इन मन इंद्रियों के अधिष्ठता देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा आदि यज्ञ, अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। 7वें अध्याय का 29वें और 30वां श्लोक, तात्पर्य है कि सत्य असत्य और उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है। त्वम अक्षरम सद सद सत तत्परम यत। संसार अपने राग के कारण ही देखता है, राग के कारण ही दूसरे सत्ता दिखती है। राग ना हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, जैसे भगवान ने कहा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते उसी हृदय में राग द्वेष हलचल अशांति होते, हृदय में ही सुख होता है, हृदय में ही दुख होता है। समुद्र मंथन में वहां से विष निकला, वहीं से अमृत भी निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दे तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, वहां परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है, सब खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें ना आंख बंद करने यानी ध्यान की जरूरत है, ना कान बंद करने की ही जरूरत है, ना नाक बंद करने की या प्रणाम करने की जरूरत। इसमें ना संयोग का असर पड़ता है, ना वियोग का, ना किसी के आने का असर पड़ता है, ना किसी के जाने का। सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर दूसरा कहाँ से आया, कैसे आया? गीता समग्र मानती है, इसीलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब कुछ, सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्या है, कारण कि सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता, पर निर्गुण में जैसे गुणों का निषेध होने पर उसके निर्गुण कहते हैं, सगुण नहीं आता, अतः सगुण ही समग्र में हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र है, असंशय समग्र माम, गीता समग्र की वाणी है, इसीलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसी को उसको वैसा ही देखने लगता है। ये यतां माम प्रपद्यन्ते तस्तत्तेव भजामि हम। कोई आचार्य पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग या कर्म मानते हैं, और कोई आचार्य पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग या कर्म मानते, परंतु गीता पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग या कर्म मानती है। गीता कर्म योग के ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है। तयोस्तुत कर्म संन्यास सात्विक कर्म योगी विशेषते। कारण कि ज्ञान योग के बिना तो कर्म योग हो सकता है। कर्म योग कर्म ने वही संसिद्धि आत्मसत जनका दया यज्ञार्चरत कर्म समग्रम प्रवीलित। पर कर्म योग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है। संन्यासस्तु महाभावो दुखम आत्म योगता। श्रीमद् भागवत में भी पहले ज्ञान योग फिर कर्म योग फिर भक्ति योग या कर्म कहा है। एक विलक्षण बात है। गीता कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को समक्ष लेकर और अलौकिक बताई है। लोको अस्मिन् विद्वानिष्ठा जगत और आचार्य जीव जगत और जीव दोनों लौकिक है। द्वाइमो पुरुषे लोके चराचर आचरा ये ओचा। पर भगवान अलौकिक है। उत्तम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तस्व में चर को लेकर कर्मयोग और अचर को लेकर यानी के जगत और जीव को लेकर ज्ञान योग चलता है। अतः कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक है परंतु भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है। अतः भक्ति योग अलौकिक है। गीता ने भक्ति में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है। छठे अध्याय का 47वां श्लोक। गीता की भक्ति वेद भावी नहीं है प्रत्युत्तर अद्वैत भक्ति है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है। कारण कि ज्ञान में तो जड़ चेतन जीव जगत जीव शरीर शरीर असत असत प्रकृति पुरुष आदि दो दो हैं। पर भक्ति में केवल भगवान ही भगवान है। वासुदेव सर्वमिति। भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी भक्ति बताई है। मैं चा अनन्य योगेन और गुणतीत होने का उपाय भी भक्ति बताया है। मामना यो भी चारेन ज्ञान की प्राणिष्ठा से भी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। मद भक्ति लभते प्राम इस पराभक्ति से जानना देखना और विशेष प्रवेश करना तीनों की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों को भगवान अपने भक्तों को कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की प्राप्ति करा देता है। भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया। सामय युक्त आत्मतो आत्मनो मना तेने ते में युक्त मा मता सा योगी परमो मता। ध्यान योग में भी भक्ति आई है। युक्त आसीत मत परहा कर्म योग में भी भगवान ने भक्ति बताई है। युक्त आसीत मत परहा भगवान ने सभी योग में अपनी भक्ति बताई है। यह भक्ति की विशेषता है। अर्जुन का प्रश्न भक्ति विशेषक नहीं था फिर भी भगवान ने अपने तरफ से भक्ति का वर्णन किया। भक्ति में भक्ति से समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता का 7वां, 9वां और 15वां अध्याय 10वें अध्याय का आरंभ तथा 18वें अध्याय के 56वें 66वें श्लोक में हमें बहुत विलक्षण दिखते हैं। इसमें अर्जुन वाच नहीं है अर्थात वे भगवान ने अपने तरफ से अत्यंत कृपा करके कहे है। गीता में कर्म योग के वर्णन में ज्ञान योग भक्ति योग की ज्ञान योग के वर्णन में कर्म योग की भक्ति योग की और भक्ति योग के वर्णन में कर्म योग ज्ञान योग की बात भी आ जाती है। इसका तात्पर्य है कि साधक कोई भी योग करे तो उसको तीनों योगों की प्राप्ति हो जाती है अर्थात उसको मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं। कारण कि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही है। ज्ञान योग पराके लेकर परा को लेकर हर कर्म योग अपरा को लेकर चलता, इसलिए किसी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगों का पूर्णता हो जाती है। परंतु इसमें एक शर्त यह है कि साधक अपने मत का आग्रह न रखे और दूसरे के मत का खंडन या निंदा ना करे, दूसरे के मत को छोटा ना माने। अपने मत का आग्रह कर रहने से और दूसरे के मत को छोटा मानकर उसका खंडन या निंदा करने से साधक को मुक्ति या तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो हो सकती है, पर भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। संपूर्ण वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषद का सार गीता है। उपनिषद का सार होने पर भी गीता बहुत अलौकिक ग्रंथ है। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर पत्तों तक रस विद्यमान रहता है, पर जो रस उसके फल में है, जो रस आम में है, वह टहनी पत्ते आदि में नहीं है। ऐसी ही संपूर्ण शास्त्रों वेदों उपनिषद का सार होते हुए भी जो विलक्षणता गीता में है, वह शास्त्रों वेदों उपनिषदों आदि में नहीं है। इसलिए गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ है, इसका सिद्धांत शास्त्रों के प्रतंत्र नहीं है। अतः शास्त्रों को पढ़कर कोई गीता के भावों को समझना चाहे तो वह समझ नहीं सकेगा। शास्त्रों का विशेष ज्ञान होने पर गीता के भावों को समझने में बाधा लगेगी, गीता के भाव ठीक समझ में नहीं आएगा। कारण कि पहले शास्त्र संप्रदाय आदि के जो संस्कार पड़ जाते हैं, जो धारणा बन जाते, वह जल्दी बदल नहीं है। गीता विद्वता यानी पंडिताई की दृष्टि से नहीं कही गई, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण की दृष्टि से कही गई। भगवान ने कोरी विद्वता के लिए अर्जुन को फटकारा, अतः गीता को समझने में केवल कल्याण की इच्छा काम आती है। शास्त्र ज्ञान योगी योग्यता बुद्धिमता आदि काम नहीं आते। अगर गीता को समझना हो तो किसी ग्रंथ संप्रदाय आदि का आग्रह छोड़कर बिल्कुल अनजान होकर केवल भगवत कृपा का आश्रय लेकर गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना, हम अगले सप्ताह और सुनाएंगे। चलो एक कीर्तन करते हैं।
Harini Skuta